मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 5 जून 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चूंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को मुझे आप सबको कुछ सूचनाएं देनी होती हैं, तो शुरुआत में कुछ सूचनाओं से करना चाहूंगा। कल और परसों यानी कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स यानी कि अखबार की कटिंग्स आपको कल एज इट इज मिलेंगी। और साथ ही साथ हम लोग एक वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, और टॉपिक भी इस तरह के लिए जाते हैं जिससे कि आप जब आप उसकी प्रैक्टिस करें तो आपके एक टॉपिक की भी तैयारी हो सके। तो एक आपको वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है प्रैक्टिस के लिए। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं पर्यावरण के बारे में कुछ बातें करूंगा, और खासकर पर्यावरण से जो भारत का संबंध रहा है या भारत की जो जीवन पद्धति है वो कितनी पर्यावरण के अनुकूल है, इस पर मैं थोड़ी सी बातें करूंगा। लेकिन पहले आइए एक दो घटनाओं को देख लेते हैं। कल के न्यूज में भी आपने सुना होगा और चैनल्स पर भी आपने देखा होगा और आज के अखबारों में भी पढ़ा होगा कि बासु चटर्जी साहब नहीं रहे। बासु चटर्जी फिल्म मेकर, ये बहुत जाना पहचाना नाम है और सच पूछे तो लोगों के दिल के बहुत करीबी नाम है। इन्होंने जो फिल्में बनाई, कई फिल्में मैंने इनकी देखी हैं, उन फिल्मों में जो सरलता होती थी, जो सहजता होती थी, मानव अनुभूति की और विचारों की जो हल्की हल्की जो कोमल गहराइयां होती थी, वो अद्भुत होती थी। दोस्तों, अद्भुत, आश्चर्य होता था कि इतनी बड़ी बड़ी बातों को कैसे इतने हल्के फुलके और कोमल और सुंदर अंदाज में पेश किया जा सकता है। ये बासु चटर्जी थे। उनकी फिल्में, कुछ नाम आपको याद होंगे, रजनीगंधा, चितचोर, छोटी सी बात। छोटी सी बात फिल्म तो अभी हम लोगों ने 3-4 महीने पहले ही देखी, इससे पहले भी देखी थी लेकिन लगा कि नहीं फिर से देखनी चाहिए। तो दोस्तों, बासु चटर्जी साहब नहीं रहे, तो मैं आप सभी की ओर से, एकेडमी के अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। क्योंकि किसी भी एक ऐसे रचनात्मक व्यक्तित्व का जाना, आप यूं कह लीजिए कि कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान का बदरंग हो जाना होता है, या यूं कह लीजिए कि उसके और रंगीन बनने की जो संभावनाएं हो सकती हैं उन संभावनाओं का नष्ट हो जाना होता है। फ्रेंड्स, आज के अखबारों में, कल के न्यूज में भी आपने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो समझौते हुए हैं उनके बारे में आपने पढ़ा और सुना है। खासकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के अभी जो संबंधों में जो एक नया एडिशन हुआ है, जो एक विस्तार हुआ है, वो इस दृष्टि से आपको देखना है कि आप देखिए कि लगातार भारत और चीन के संबंध कहीं ना कहीं थोड़े से तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, बावजूद इसके कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत बेहतर हैं, और जब भी दोनों एक दूसरे देशों की यात्राएं करते हैं तब वो बहुत ही दोस्ताना अंदाज में सब कुछ होता है। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर की बात आती है तो उसमें एक तनाव सा दिखाई देता है, और खासकर अभी जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बन रहा है उसमें थोड़े से संबंधों के तनावपूर्ण होने की और संभावनाएं हो गई हैं, जिसके बारे में हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं। इस बीच आप देखिए कि कोरोना वायरस से किस तरह से पूरी दुनिया त्रस्त है, लेकिन चाइना बकायदे जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, जिसे इंग्लिश में आप इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं, इसमें अपना दबदबा बनाए रखने की लगातार कोशिश कर रहा है। कभी उसकी पनडुब्बियां आ जाती हैं, कभी उसके जहाज आ जाते हैं, इस तरह से लगातार वो अपनी एक्टिविटीज बनाए रखना चाहता है, बनाए रख रहा है। उसका मूल कारण यही है कि वो इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व चाहता है, और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है विश्व व्यापार की दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम लोग पहले विस्तार से बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप देखिए कि भारत के लिए सबसे ज्यादा ये स्थिति चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत का तो जो आप यूं कह लीजिए कि जो व्यापार है, ज्यादातर व्यापार हिंद महासागर से ही हो रहा है, फिर हमारी इधर समुद्री सुरक्षा की भी बात आती है। तो ऐसी स्थिति में भारत की लगातार ये कोशिश होनी ही चाहिए, उसकी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए कि किस तरह से वह चीन के फैलते हुए प्रभुत्व को रोक सके, और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो संबंध विकसित हो रहे हैं वो इसी रणनीति का एक भाग है। और आप जो समझौते हुए हैं जब उन्हें ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें बकायदे सामरिक रणनीति की बात कही गई है, बकायदे सामरिक रणनीति की बात, और उसमें जो समझौता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए इंडो पैसिफिक मैरीटाइम में जो सहयोग बढ़ाने की बात है वो इसीलिए है कि वो दोनों एक दूसरे को इस बारे में सपोर्ट करेंगे। तो आप इसे इसी एंगल से देखें, इसके पूरा विस्तार से जाने की आपको जरूरत नहीं है कि कौन कौन से समझौते हुए और उनके क्या क्या उद्देश्य हैं। केवल इतना ही मैं समझता हूं कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के जिस तरह से संबंध विकसित हो रहे हैं वो भारत के बहुत हित में है। दोस्तों, अब मैं आता हूं सीधे सीधे आज के मुख्य विषय पर, और इस मुख्य विषय का चुनाव मैंने पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया है। 5 जून आज पर्यावरण दिवस है। आपको शायद मालूम होगा कि इसकी जो शुरुआत हुई थी पर्यावरण दिवस की 5 जून को, वो इसलिए हुई थी कि 1972 में स्टॉकहोम में यूएनओ का एक सम्मेलन हुआ था ह्यूमन एनवायरमेंट पर, और ये सम्मेलन 5 से 16 जून तक चला था 1972 में। तो 5 जून को चूंकि इसकी शुरुआत हुई थी तो 5 जून को फिर विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। और मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि इस बार का जो विषय रखा गया है, जो थीम है, वो है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारी जैव विविधता है इसका उत्सव मनाएं। उत्सव मनाएं कहने का मतलब यही है कि हम इसकी रक्षा करें, इसे आगे बढ़ाएं। मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, जो पेड ऑनलाइन स्टूडेंट है, बताना चाहूंगा दोस्तों कि जैव विविधता पूरे के पूरे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं, और जिस 1972 मैंने सम्मेलन की बात की है उस सम्मेलन पर भी एक इंडिपेंडेंट लेक्चर है। तो आपको चाहिए कि यदि अवसर मिल सके और आपके रूटीन में कोई बाधा न हो तो कम से कम जो स्टॉकहोम वाला जो सम्मेलन है वो लेक्चर तो आप सुन ही लें, और अगर नहीं भी सुनते हैं तो कोई बात नहीं, आप बाद में भी सुन सकते हैं। जैव विविधता पर लेक्चर में विशेष ध्यान दिया गया है। दोस्तों, यहां जो मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं वो कुछ दूसरे मुद्दों पर, एक दो जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे जो मुझे लगे उसके बारे में मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं एक अखबार जब पढ़ रहा था तो उसमें मुझे एक बहुत अच्छा वाक्य पढ़ने को मिला दोस्तों, और वह वाक्य था क्लाइमेट ब्रेकडाउन। जो वर्ल्ड आप कह लीजिए कि जो विश्व फंड है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, उसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं WWF, उनका नाम है पवन सुखदेव। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये क्लाइमेट चेंज की बात नहीं है, ये क्लाइमेट ब्रेकडाउन है। क्लाइमेट ब्रेकडाउन का मतलब है कि हृदयाघात, ये हार्ट अटैक है, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा। तो इस शब्द का आप उपयोग कर सकते हैं अपने निबंध लेखन में या अपने उत्तर में, क्लाइमेट ब्रेकडाउन। ये पहली बार मुझे यह शब्द पढ़ने को मिला है। दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अभी जब COVID-19 इतनी बुरी तरह से दुनिया में फैल चुका है, अब जो नए रिसर्च आ रहे हैं उस रिसर्च में ये बात दिखाई दे रही है कि जहां प्रदूषण ज्यादा था वहां कोरोना ज्यादा फैला और वहां डेथ रेट भी ज्यादा रही है, अपेक्षाकृत ज्यादा रही है। उदाहरण के तौर पर अगर आप भारत को ही देखें तो आप देखिए कि मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, पुणे, ये सब हमारे महानगर हैं, बड़े नगर हैं, और यहां प्रदूषण का स्तर भी सबसे अधिक है। और हमारे देश में भी जितना भी संक्रमण फैला है उसका 40% संक्रमण इन्हीं शहरों में है, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण से इसका संबंध है। और यहां कोरोना से जो मृत्यु की दर भी है वो लगभग 3.85% यानी कि 4% के आसपास है, जबकि हमारा जो नेशनल एवरेज है वो 2.8% है। तो आप देखिए कि 1.5 गुना वहां ज्यादा मृत्यु दर भी है। ये भारत के ही बारे में नहीं है, ये विश्व के बारे में है। और अगर आप चाहें तो ये आंकड़े आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे इटली में सबसे ज्यादा ये फैला है नॉर्थ इटली में, उत्तरी इटली में, और वहां मृत्यु दर 12% के आसपास है। आप सोचिए 12%, ये बहुत बड़ा प्रतिशत है ना, हमारे यहां तो 2.8% है। और बकायदे रिसर्च में ये पाया गया है कि जो प्रदूषण है वो प्रदूषण अगर कम हो तो वायरस का फैलाव कम होता है, और अगर प्रदूषण अधिक है तो जो पार्टिकल्स होते हैं उसके जरिए भी ये जो कोरोना संक्रमित होता है उनके माध्यम से भी वो दूसरे स्थानों तक पहुंचता है। अमेरिका के रिसर्च में भी यह पाया गया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कि जो इलाके ज्यादा प्रदूषित हैं वहां जो मृत्यु दर है वो 15% के आसपास रही है। तो दोस्तों, ये नए रिसर्च सामने आ रहे हैं, और चूंकि ये बहुत ही लेटेस्ट है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में आपको नोट कर लेना करके और इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। जो महत्वपूर्ण बात यहां जो मैं और कहने जा रहा हूं दोस्तों कि जो भारत है इस मामले में आप यूं कह लीजिए कि सबसे ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की लाइफ जी रहा है। हमारी जो जीवन शैली है वो दुनिया में सर्वोत्तम इस मायने में कि हम पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाकर चल रहे हैं और इसे जो विश्व की एजेंसीज हैं डिफरेंट डिफरेंट वो स्वीकार करने लगी है। जैसे आप देखिए कि हमारे यहां अमेरिका की तुलना में जो जनसंख्या है वो लगभग लगभग 5 गुना है, मोटे तौर पर कह लीजिए 4 गुना कह लीजिए, हमारी जनसंख्या 4 गुना है। इसके बावजूद जो हम ईंधन की खपत करते हैं या कह लीजिए कि हमारी तुलना में अमेरिका के ईंधन की खपत 16 टाइम्स है, 16 गुना ईंधन खपत कर रहे हैं, मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं। और यहां तक कि बिजली की जो खपत है हमसे 19 गुना ज्यादा है जबकि पॉपुलेशन हमारा 1/4 है। तो आप देखिए कि कौन सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है, इनसे ये सब बातें सिद्ध होती हैं। यहां तक बकायदे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह कहा है कि जो भारतीय उपभोक्ता हैं, हमारे जो कंज्यूमर हैं, वो पर्यावरण को लेकर के सबसे अधिक जागरूक हैं। कैसे जागरूक हैं? अब आप देखिए कि जैसे आप कार ले लीजिए, हमारे यहां 4-व्हीलर से चलने वालों की संख्या बहुत कम है, सबसे ज्यादा हमारे पास 2-व्हीलर है, 2-व्हीलर्स में लोग सफर करते हैं वो कम प्रदूषण करता है और सबसे ज्यादा हमारे यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उपभोक्ता के रूप में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा महत्व देते हैं तो प्रदूषण हम कम कर रहे हैं। आप देखिए कि हम कोई भी चीज ले लेते हैं तो हम उसका कितना मल्टीपल इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का भी कुछ हुआ तो उस डब्बा रख लिया, डब्बे में सामान रख लिया, फिर और कुछ कर रहे हैं। कपड़े को देखिए आप कितनी बार हम इस्तेमाल करते रहते हैं, ये नहीं कि उठाया और फेंक दिया। यूज एंड थ्रो का जो कॉन्सेप्ट है वो विकसित देशों का है, हमारे यहां ऐसा नहीं है, हम उसको लगातार रीयूज करते हैं। इसका मतलब है कि हम प्रकृति के संसाधनों का सबसे कम दोहन कर रहे हैं, यानी कि प्रकृति को सबसे कम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। भारत दुनिया का ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा संख्या में अपना उगाया हुआ अनाज खाता है। देखिए हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है 57% के आसपास है, 60% कह लीजिए, तो उसमें ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं जो खुद अनाज पैदा करते हैं और अपना अनाज खाते हैं। तो दोस्तों इस दृष्टि से आप भारत को पर्यावरण मित्र राष्ट्र कह सकते हैं और ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यावरण पर हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, मेंस में खासकर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, निबंध भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपके दिमाग में ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि भारत की जो जीवन शैली है वो किस तरीके से पर्यावरणीय अनुकूल है। ये बात अलग है कि फिर भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है और हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना उसका मूल कारण है हमारी जो जनसंख्या है और हमारा जो लैंड का जो रेशियो है वो दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है। मतलब अगर लोग भारत की शैली में जीना शुरू कर दें तो यूं कह लीजिए कि बहुत कम पृथ्वी से काम चल जाएगा क्योंकि हम पर्यावरण के अनुकूल जी रहे हैं। और कहा जाता है कि अगर हम अमेरिकी शैली से जीना शुरू करेंगे तो अभी जो पृथ्वी है ना इसके 5 गुना पृथ्वी और चाहिए और अगर हम पूरी दुनिया की शैली में जीना शुरू करें तो 1.75 पृथ्वी और चाहिए, जबकि अगर हम भारत की शैली में जीना शुरू करें तो 0.7 पृथ्वी से काम चल जाएगा, यानी कि लगभग लगभग 1.25 गुना पृथ्वी और हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो हमारे यहाँ जो पर्यावरण की जो मूल समस्या है वो यूं कह लीजिए कि जो जनसंख्या है और जो भूमि है उसका अनुपात है, अदरवाइज काफी कुछ हम सबकी जो जीवन शैली है वो पर्यावरण के अनुकूल है, ये हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। कुछ तथ्य मैंने आपको इसके साथ ही दे दिए हैं। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और मित्रों इनमें से मैं 2 मित्रों को विशेष रूप से साधुवाद देना चाहूंगा और वे हैं आयुष मिश्रा और कवलजीत कौर जिन्होंने देहदान के बारे में फैसला किया है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको ध्यान होगा कि लाइफ मैनेजमेंट में मैंने अपने फादर इन लॉ कि जो आप कह लीजिए अंतिम इच्छा थी वो उसके बारे में कुछ बातें की थी, तो ये मेरे लिए बहुत ही आत्मसंतोष की बात है कि लोग इस पर विचार कर रहे हैं और निर्णय भी ले रहे हैं। तो आयुष मिश्रा और कवलजीत कौर आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद और साधुवाद। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं रवि यादव, शिवानी शर्मा, श्रुति वसंत शिंदे, मयंक द्विवेदी विरोहा उत्तर प्रदेश से, रोशनी वैशाली बिहार से, दीपक झा ललितपुर उत्तर प्रदेश से, सगुना श्रीमाली और ऋचा फरीदाबाद उत्तर प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, अपना ध्यान रखें, दो दिनों के बाद फिर मुलाकात होगी। शुभकामनाएं, नमस्कार।